संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
इस भगवान आत्मा ने अनादि काल से संयोगों में ही सुख माना है, इसलिए उनके जुटाने में ही सारी जिंदगी खराब की है। और इन संयोगों का जुटाना मेंढकों के तौलने जैसा है। मेंढक को तराजू पर रखो तो एक मेंढक को रखो तो दो उछल के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही हम इन संयोगों को जोड़ने के चक्कर में एक संयोग को इकट्ठा करते हैं तब तक दूसरा संयोग बिखर जाता है। जब हमारी ऐसी पाचन शक्ति थी कि पत्थर भी खाएं तो हजम हो जाता था, हलवा पूरी खाते तो सब हजम हो सकता था, तब खाने को सूखे चने भी नहीं मिलते थे। और हमने बहुत परिग्रह जोड़ जोड़ कर ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि हम चाहें तो रोजाना घी में ही डूबे रहें, तो अब वे सूखे चने भी पचते नहीं हैं। जब भोग सामग्री थी तब भोगने की ताकत नहीं है, जब भोगने की ताकत थी तो भोग सामग्री नहीं थी। इस सारे संयोगों की ये स्थिति है, इसलिए अनंत प्रयत्न करने के पर भी इसे आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इन 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से आचार्य हमें इसका ज्ञान कराना चाहते हैं कि भाई, तुम जिन संयोगी पदार्थों को, संयोगी पदार्थ माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और अपना शरीर, ये सब चीजें जो हमारे पुण्य और पाप कर्म के उदय के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं, इन सब का एक नाम है संयोग। अब ये संयोग क्षणभंगुर हैं, क्षण क्षण में पलट जाने वाले हैं, ये असरण हैं। असरण का अर्थ होता है कि किसी भी कीमत पर इनका जाने का समय आ जाए तो कोई दुनिया की ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। कोई ऐसा शरण नहीं है कि जाते हुए संयोगों को रोक ले, इसका नाम है असरण। वस्तु स्थिति यह है कि इनका एग्रीमेंट पुण्य पाप के उदय के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुम समझ रहे हो कि ये हमारे हैं, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमारी आज्ञा में चलने चाहिए, क्योंकि ये हमारे हैं, ये हमारी संपत्ति है और हम इसके मालिक हैं। और देह तो हमारे अत्यंत नजदीक की है, उस वो तो हमारी सारी बात, उस पर हमारी चलनी चाहिए। लेकिन इनका सारा प्रणमन पुण्य पाप के अधीन है। जब जब तक हमारे पुण्य का उदय है और उसके उदय में जो संयोग मिला है वो संयोग कायम रहेगा, और जिस दिन वो खलास हो गया तो एक सेकंड भी वो संयोग हमारे लिए कायम नहीं रहेगा। अब हम उन्हें कितने ही रोकने की कोशिश करें, वो हमारे रोकने से रुकने ही वाले नहीं हैं और हमारे हटाने से हटने वाले नहीं हैं। पाप के उदय से जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम अनिष्ट संयोग नाम देते हैं, तो वो हमारे हटाने से हटने वाले नहीं हैं जब तक पाप कर्म का उदय मौजूद है तब तक। इसलिए हमारा ये सारा प्रयत्न व्यर्थ में निरर्थक ही जा रहा है इन्हें जोड़ने का और जुड़े हुओं को रोकने का। आचार्य अनित्य भावना और असरण भावना के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम जिन संयोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हो और जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके जुड़ने में और रुकने में तुम्हारा रिंच मात्र भी अधिकार नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि वे क्षण भंगुर हैं, वे प्रति समय बदलने वाले हैं, जो आज की स्थिति है वो कल रहने वाली नहीं है, जो कल की स्थिति है वो आज रहने वाली नहीं है, ये निरंतर बदलती रहेगी। तो वो कहता है कि इनका स्वभाव ही अनित्य है। आचार्य कहते हैं कि स्वभाव ही अनित्य है। अनित्य का मतलब ये है कि एक समय भी बदले बिना नहीं रहे। तो वो सोचने लगता है कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो गारंटी से जो ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है वैसा ही होगा, बदल ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश करें तो रुक ही सकता है। जैसे अपन कहते हैं तबादला हो गया हमारा, वो रूटीन में होता है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हम जाकर के सिफारिश करें, नेताजी की सिफारिश ले जाएं, कहीं से कुछ ले जाएं, तो वो रुक सकता है। यानी दूसरे दिखता है ये कि होना तो नक्की है, वो तो रूटीन का काम है राजकुमार, है ना, लेकिन हमारी यदि अच्छी पकड़ हो ना तो रुक भी सकता है। तो वो जो इसकी ये कल्पना है कि ये संयोग तो आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये तो रूटीन का रास्ता है, लेकिन स्पेशल केस में यदि हम भगवान के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें, शायद भगवान रोक दें, कोई जंतर मंतर जप लें उससे रुक जाए, हम गुरु के पास जाएं, यानी कोई ना कोई रास्ता ऐसा अवश्य होगा कि इस डेली रूटीन में हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके विरुद्ध यह बात कही गई कि अशरण है, माने दुनिया में ऐसी कोई शरण नहीं है कि जिसकी शरण में तू जाएगा तो जिन संयोगों को तू रोकना चाहता है वे संयोग रुक जाएंगे, ऐसी इस जगत में कोई शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा उस पर्याय का, उस संयोग का अनित्यता स्वभाव है, वैसे ही अशरणपना भी उसका स्वभाव में ही शामिल है। अपन जानते हैं कि एक आदमी हमारे पास आया कि इस विद्यार्थी को भर्ती करना है, इसे भर्ती कर लीजिए, उसने हमने एप्लीकेशन दी और हमने कहा जगह खाली नहीं है, हमने वापस कर दिया। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जे यहाँ से क्या कोई ना किसी नेता के पास जाएगा, सेठ के पास जाएगा, हमारे रिश्तेदारों के पास जाएगा, मित्रों के पास जाएगा और कहीं ना कहीं से सिफारिश लाएगा, इन गारंटी से हम पर प्रेशर बनाएगा। अब दो चार फोन आने वाले हैं, क्यों तो हम पहले ही से कह देते कि देख ले भाई कि तू 400 जनों की सिफारिश लाना, लेकिन ये काम संभव ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही जो प्रवेश है वो बंद हो गए हैं, तारीख निकल चुकी है, इसलिए अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसे बेकार की मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। और तुमने यदि फिर भी ये कोशिश की ना तो हम ये समझेंगे कि तुम हमारे विरुद्ध यहां वहां वातावरण बना रहे हो, ये शत्रुतापूर्ण काम कर रहे हो, हम ऐसा मानेंगे क्या? तुम पहले ये बात समझ लो, क्योंकि व्यर्थ में 10 आदमी हमसे कहेंगे, हम उन 10 आदमी को मना करेंगे, थोड़ा इरिटेशन होगा, हमें भी गुस्सा आ सकता है, उन्हें भी गुस्सा आ सकता है, जो हमारे 10 आदमी मित्र हैं उनकी मित्रता में तुम बाधक बन रहे हो क्योंकि काम तो होने वाला है नहीं। तो ये जो अंदर में ये भावना बनी है ना कोई रास्ता होगा, काय में कि संयोग जो परिवर्तनशील हैं, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले हैं, इनमें कोई ना कोई रास्ता होगा, कम से कम भगवान तो इसमें से परिवर्तन करा ही सकेंगे, कोई ना कोई शरण जरूर होगा। तो कि पंच परमेश्वरी शरण है, अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, क्यों? इनके शरण में जाओ तो काम हो जाएगा, तो असुरण भावना में कहते हैं कि कोई शरण नहीं है, ये अर्थ है कि वो संयोग है वो बिखरने वाला है, जो संयोग नहीं होने वाला है वो नहीं होने वाला है, उसमें कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है वस्तु के स्वरूप में कि जहां सिफारस से काम चल सकता हो। इसके चिंतन किया जाता है असरण भावना में। क्या इसमें तुम श्रम मत करो बेकार, अपने समय और शक्ति इसमें खराब मत करो। ये संयोग तो अपने हिसाब से आएंगे अपने हिसाब से चले जाएंगे। जरा विचार करके देखो कि एक बच्चा भी पैदा हुआ और भाग्य से वो लड़का है, तो 20 वर्ष की उम्र में उसकी ऑटोमेटिक मूछें यहां आ जाएंगी ना, तो 5 वर्ष की उम्र में निकाल लो, है कोई ऐसी दवाई है? 6 महीने में दांत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जन्म के वक्त ही निकाल दो उन्हें, और फिर वो 50-60 वर्ष की उम्र में गिर जाएंगे, फिर रोक लो उन्हें, तुम दूसरे लगवा लो नए, वो अलग बात है नकली। वे अपने समय पे आएंगे अपने समय पे चले जाएंगे, ये बाल अपने समय पे आएंगे अपने समय पे झड़ जाएंगे, ये मूछें समय पे आएंगी समय पे काली रहेंगी, काली है सफेद हो जाएंगी। इनका जो सुनिश्चित प्रणमन है उस प्रणमन में रंज मात्र भी फेरफार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका नाम ही क्या है? असरण भावना। ये क्रमबद्ध पर आएगी तो बात हो गई ना भाई साहब। क्यों? कि सब कुछ नक्की है। सब कुछ नक्की क्या है हर्षद भाई? सबसे पहले तो ये नक्की है कि कोई भी पर्याय होगी वो अगले समय में गारंटी से बिगटेगी। कभी भी एक सी वो कायम नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। प्रति समय बदलेगी। तुम समझ रहे हो कि हम 70-80 वर्ष में बदलेगी मनुष्य पर्याय जब हम मरेंगे तब? अरे बहुत जरा बड़ा परिवर्तन है ऐसा समझ लो, लेकिन ये तो निरंतर मृत्यु की तरफ भाग रहे कि नहीं? तो एक तो है कि निरंतर परिवर्तन होगा, एक तो उसका स्वभाव ये है और स्वभाव को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। तब वो कहता हम कोशिश करके देखेंगे कि व्यर्थ में कोशिश करने के चक्कर में मत पड़ो, समय शक्ति खर्च मत करो। ये विचार किया जाता है असरण भावना में। तो क्या हुआ नक्की? के जो संयोग जब मिलना है तब मिलेगा और जब जाना है तब जाएगा। उसका उपादान तो क्या है? उस स्वयं उस द्रव्य का प्रणमन। और निमित्त क्या है? हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय है ना। अब इसमें कोई तीसरा ना निमित्त है ना उपादान है। पड़ोसी से लेके भगवान तक, इसलिए किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो पर्याय ही असरण है। तो पहली तो ये बात कि ये संयोग हमारे मन का हो और हम जब चाहें तब तक रहे और जब चाहें तब हट जाए, इसके विरुद्ध तो अनित्य भावना है। क्यों? और हम किसी के संयोग से इसको संयोग से रोक लें, इसके विरुद्ध असरण भावना है। क्या रहा नक्की? ये दो बातें यदि सिद्ध हो गईं और हमने अंदर से स्वीकार कर लिया इन दो भावनाओं को, चिंतमन करके अपने चित्त को ये बना लिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, जैसे संयोग मिलने होंगे क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार कर्म के उदय के अनुसार वो हमें मिलेंगे, और जिन संयोगों को जब जाना होगा तब वे जाएंगे, हम रोक नहीं सकेंगे। इतना नक्की हो गया। तब उसका दिमाग कहाँ दौड़ता है कि ठीक है भैया ये रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक तो पक्का है ना, तो तब तक तो इसके मजे लूट ही लो, तब तक तो इसका उपयोग पूरा कर ही लो। समझे ना? जैसे कि वो झूला झूलते हैं बच्चे, तो उसको देते हैं 5 रुपया दिया, तो वो मान लो 10 मिनट झुलाएगा तो 10 मिनट बाद तो उसे गारंटी से उतरना पड़ेगा ना। तो कहता है तुम 10 मिनट बाद उतरना पड़ेगा उसके लिए काय को रोते हो, पहले 10 मिनट तो खूब मजा ले लो ना। माने जो संयोग स्वयं के कारण सहज ही हमें प्राप्त हो और अपनी उम्र के हिसाब से कायम रहें, समझ में आए ना आपके, जब नहीं रहे तब तक नहीं रहे, ये जब दांत जब तक नहीं थे तो नहीं थे और जब अपने कारण आए तो आए और जब जाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन तब तक हैं तब तक तो खूब मजा ले लें, अच्छे अच्छा माल मसाला खा के चबा चबा के, क्यों ऐसी वृत्ति वाले कुछ लोग हैं। तो वो कहते हैं भाई साहब कि उन संयोगों में मजा नाम की चीज है ही नहीं, वो असार हैं, इसका नाम संसार भावना। क्या संसार का नाम कि हमारे पुण्य पाप के उदय से जो हमें संयोग मिले हैं और उनके लक्ष्य से जो हमारे राग देश के परिणाम हो रहे हैं उसका नाम है वास्तव में संसार। ये संसार इस दुनिया का नाम नहीं है, वास्तव में जो संयोग मिले हैं शांतिलाल जी ये भी संसार नहीं है, इनके प्रति जो हमारे हृदय में अपनापन का भाव है, जो राग है अथवा इनसे जो द्वेष है उसका नाम संसार है और उसकी वजह से इन्हें संसार कहा जाता है। जो हमारे लिए शरीर संसार है कि नहीं, कि हमारे लिए है और अनंत भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान के भी शरीर तो मौजूद है ना, लेकिन उसके प्रति उन्हें राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए वो उनका शरीर होने पर भी संसार नहीं है और हमारा उसके प्रति राग द्वेष है तो हमारे लिए राग द्वेष असली संसार है, निश्चय संसार है और ये शरीर स्त्री पुत्र जो है ये हमारे लिए व्यवहार संसार है। ये राग द्वेष मिट जाए तो ये संसार नहीं रहेंगे, तो ये संयोग और संयोगी भाव, संयोग माने पुण्य पाप के उदय से जो जो चीजें हमारे लिए प्राप्त हुई हैं उन सबका एक नाम है संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा इन सबका नाम है संयोग। जब मैं ये बात कहता हूं तो बार बार ये कहते हैं लोग कि आप बार बार पुण्य पाप के उदय से, पुण्य पाप के उदय से क्यों बोलते हो, ये रुपया पैसा स्त्री पुत्र क्या पाप के उदय से मिलते हैं? अरे हम तो ये मानते हैं सब पुण्य के उदय से मिलते हैं, पाप के उदय से तो इनका वियोग होता है। क्या हुक्म जी? कहते ऐसा नहीं है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद पुण्य के उदय से भी मिलते हैं और पाप के उदय से भी मिलते हैं। रुपया पैसा मकान जायदाद ये पुण्य के उदय से भी मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो बादशाह था ना औरंगजेब का बाप, उसको जो औरंगजेब मिला था वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? जिसने बाप को जेल में डाल दिया हमारा, क्यों? ये जो राजा सैनिक को जो बेटा मिला था जिसने उसे जेल में डाला था वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? क्यों? अरे भाई लायक पुत्र, अनुकूल व्यवहार करने वाला पुत्र, सब तरह से हमें सुख पहुंचाने वाला पुत्र यदि पुण्य के उदय से मिलता है तो ऐसा नालायक पुत्र पाप के उदय से मिलता है? यदि अनुकूल पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है तो प्रतिकूल पत्नी पाप के उदय से मिलती है, समझे ना? ऐसे ही अकेले स्त्री पुत्र की बात नहीं है, ये अनुकूल शरीर यदि पुण्य के उदय से मिला है तो 1000 बीमारियों का घर ये भी पुण्य के उदय से मिला है, ये काला कलूटा लोग देख के ही हंसने लग जाएं, ये बाहर को निकले हुए दांत, क्यों ये धसी धसी आंखें, ये भी पुण्य के उदय से मिलती होंगी, क्यों बोलो? हमारे शरीर को देख के ही लोगों को घृणा हो, ऐसा शरीर पुण्य के उदय से मिलेगा कि पाप के उदय से? समझे ना, अकेला पुण्य के उदय से मिलता है, इस धोखे में मत रहना। ये सब पुण्य पाप के उदय से मिलने वाली चीजें हैं और ऐसा भी नहीं है कि साहब हमारे पुण्य के उदय से हमें अच्छा बेटा मिल गया, अब बीच में आ गया पाप का उदय और फिर तो फैमिली प्लानिंग करा लिया, अब बच्चा तो पैदा हो ही नहीं सकता है तो क्या होगा? कि चिंता मत करो, वो जो बेटा पुण्य के उदय से मिला है उसे आंख बदलते देर नहीं लगेगी, जब पाप का उदय आएगा तो वो ही बेटा नालायक हो जाएगा। क्यों? जो पत्नी आज आपकी सेवा में हाथ में लगी रहती, जो पुण्य के उदय से मिली है ना, कल तुम्हारे पाप का उदय आएगा तो एक मिनट आंख बदलते देर नहीं लगेगी, और बोलेगी मैंने बहुत तुम्हारी सेवा करी, अब मैं दासी नहीं हूं, अब ऐसा नहीं चलेगा, जमाना बदल गया है। एक मिनट में रंग बदलते देर नहीं लगेगी। क्यों? वो क्यों बदली? मोहनलाल जी, हमारे पाप का उदय आया था, समझ गए आप? कहने मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो संयोग हैं बाहर के, इनका जो एग्रीमेंट है वो पुण्य पाप के हिसाब से है, तुमसे तो है नहीं। अब जैसा जैसा यहां उदय आता है ऐसे ऐसे वो रंग बदल देते हैं। हम कहते हैं देखो ये सब दोस्त आंख बदल दिए, पहले हमारी पाजी हजूरी में खड़े रहते थे, कितनी कितनी बातें करते थे, और अब हमारे दिन खराब आए तो सब मुंह फेर लेते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता, देखते कि नहीं देखते अपन। क्यों? ये मुंह नहीं फेर रहे हैं, तेरे अंदर के पुण्य ने मुंह फेर लिया है, तेरे भवतव्य ने मुंह फेर लिया है, इसलिए इनका मुंह फेरा है। तो इनमें कोई तू चेंज नहीं कर सकता बाहर से प्रयत्न करके, इसलिए अपनी शक्ति इसमें मत लगा, इस पे से दृष्टि हटा। ये अनित्य हैं, ये स्वयं बदल जाने वाले हैं, और ये बदलने वालों को रोका नहीं जा सकता है, और जो अभी कायम हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, इसका नाम है अनित्य और असुरण भावना। कि इसका चिंतन हम रोजाना करें, क्योंकि हमको रोजाना इन्हीं के लक्ष्य से राग देश होता है, और हमारी सारी शक्ति इसमें ही लगती है कि अनुकूल संयोग आ जाए और प्रतिकूल संयोग हट जाए। तो कहते भाई साहब ये संयोग ना तेरे को दुख देने वाले हैं और ना ये तेरे को सुख देने वाले हैं, क्योंकि ये तो पर हैं, अनित्य हैं, इससे तुझे क्या लेना देना, जैसे रहे रहने दे। इस दुख का कारण तो तेरे अंदर जो इनके प्रति राग देश का भाव है, अपनेपन का भाव है, वो असली तू दुख का कारण है, तू उसे पहचान, वो असली तेरा संसार है। क्या कह रहा है? ये संसार भावना की बात चल रही, तेरा संसार क्या है? ये दुनिया तेरा संसार नहीं है, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद संसार नहीं है। जो अंदर का जो मोह राग देश का परिणाम है, जो इन स्त्री पुत्र के लक्ष्य से पैदा होता है, शरीर के लक्ष्य से पैदा होता है, वो जो मोह राग देश का परिणाम है, कसाय भाव है, वो तेरा संसार है। और इसलिए जो तू सोचता है कि जो भी संयोग हमें मिले हैं उनका मजा तो ले ही लें, तो वो कहते हैं इनमें मजा है कहां? अरे जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि अरे भाई चक्रवर्ती तीर्थंकर, यदि इसमें सुख होता इस भोग सामग्री में इन संयोगों में, तो वे इन्हें छोड़ के क्यों चले जाते? तू एक बार गंभीरता से विचार कर कि जिसमें तू सुख मान रहा है इन संसार में, वो संसार में सुख है ही नहीं, ऐसा चिंतमन करना, उसका नाम संसार भावना है। एक ये अनित्य है संयोग, असरण है, और तीसरे ये दुखमय हैं, निस्सार हैं, निरर्थक हैं। तो इस तरह इन संयोगों पर से दृष्टि हटाकर इन 12 भावनाओं के चिंतमन से स्वभाव की तरफ दृष्टि ले जाने का प्रयत्न किया गया है। यदि हम इसमें सफल हो गए, हमारी दृष्टि इन चिंतमन से संयोगों की तरफ से हटकर स्वभाव की तरफ आ गई, तो समझ लेना हमारी 12 भावनाओं का चिंतमन सफल है। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देखे।